गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन सरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल ओम शांति। कुछ भाई बहनों के प्रश्न आए हैं विजय माला की, विजय रत्नों की बातें सुनकर। कई सोचते हैं कई लोग तो लंबा लंबा समय मधुबन में रहे हैं, बड़ा सुख पाया है उन्होंने। कईयों के और कुछ प्रश्न है कि हम तो 5 साल से आए हैं, 6 साल से आए हैं। जैसा मैं कह आया हूँ कि इसमें समय की और कौन कहाँ रहता है उसकी ज्यादा बात नहीं है, बात है किसने क्या स्थिति बनाई है। ध्यान दें आप एक बात पर, एक है योग अभ्यास करना सर्वोत्तम चीज, लेकिन दूसरा है योग अभ्यास और ज्ञान चिंतन के द्वारा किसने क्या स्थिति बनाई है। स्थिति किसे कहते हैं, जिसमें आत्मा स्थित हो जाए वो स्थिति है। अर्थात आत्मा अपने किन सद्गुणों का स्वरूप बनी है, उसमें नम्रता आ गई है, ह्यूमिलिटी आई है, बहुत हम्बिल बन गए हैं, सरलता आ गई है, क्रोध जीत लिया है, संतुष्ट आत्मा बन गए हैं, बहुत खुश रहते हैं, फीलिंग नहीं आती है, ये अच्छी स्थिति के लक्षण है। कई लोगों का ऐसा होता है योग भी अच्छा करते रहते हैं लेकिन इरिटेट भी रहते हैं, या छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ जाते हैं, या मुख से दुखदाई वचन बोलना उनका ठीक नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि स्थिति नहीं बनती। योग तो करते रहते हैं तो हमें ध्यान देना है योग भी हमारा अच्छा हो, योग का सुख बहुत अच्छा मिले, बहुत इंद्रिय सुख है, और हमारी स्थिति भी अच्छी होती चले, हम निर्भय होते चले, ऐसे नहीं हम व्यर्थ गपशप में भी रहते हों, उससे हम मुक्त होते चले, सबका सम्मान, बड़ों छोटों का सम्मान, हमारी एक नेचुरल स्थिति हो, जीवन में रॉयल्टी आ रही हो, बोलना कम हो गया हो, ये श्रेष्ठ स्थिति के लक्षण, प्योरिटी, शुभ भावनाएं, सबके लिए प्यार बढ़ गया हो। तो विजयी रतन, पहली चीज तो है उनका योग का अभ्यास 8 घंटे होगा। मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं कि 8 घंटे बैठना नहीं है, स्मृति स्वरूप स्थिति कुछ बैठ के भी। दूसरा, उन्होंने अपने अहंकार को संपूर्ण रूप से जीत लिया होगा, मैं मेरा तू तेरा टकराव इच्छाएं, इन सब पर विजयी हो गए होंगे। और तीसरी स्थिति है बहुत प्योरिटी की, कर्मेंद्रियां शीतल, देह के आकर्षण समाप्त, यानी माया पर विजय। अब माया से उन्हें युद्ध नहीं करना पड़ रहा है बल्कि माया पीछे हट गई है, उसने अपनी हार मान ली है। और ये जो नंबर बनते हैं उसका आधार होता है कि भाई कभी कोई व्यर्थ संकल्प आया तुरंत खत्म कर लिया, उस आधार पे व्यर्थ संकल्प कोई इम्प्योर संकल्पों की बात नहीं, कोई और व्यर्थ संकल्प आ गए और जल्दी से उन पे विजय प्राप्त कर ली, वो भी विजयी रतन माने जाते हैं। चौथी बात होती है हम कितने संतुष्ट आत्मा बने हैं, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है और बाबा की बहुत सारी मुरलियां, व्यक्त मुरलियां भी इस पर चल चुकी हैं कि हमें बहुत बहुत अच्छी तरह एक संतुष्ट तृप्त आत्मा बन जाना है। एक तो तृप्त इसलिए कि जो कुछ पाना था, भगवान को पाना था ना, पा लिया, उसका संपूर्ण ज्ञान पाना था, वो भी पा लिया। मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करना था, वो भी हो गया। अब तो निश्चित हो गई हमारी। और फिर संतुष्टता का दूसरा अर्थ ये है कि हमने सेवा से सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। सर्व खजानों से भरपूर आत्मा ही संतुष्ट आत्मा बनती है। और पांचवी बात है, हमारा जीवन बहुत सरल हो गया हो पूरा। क्योंकि लाइफ को लोग देखते हैं ना, कितनी किसकी सरल चित्त जीवन है, कौन कितना सहज भाव से जीवन का आनंद ले रहे हैं। दुनिया में तो भाग दौड़ है ना, जिंदगी में चैन नहीं है, जैसे स्थिरता नहीं है। योगियों की लाइफ, विजय रत्नों की लाइफ, शांत, सब कुछ मिल गया और सहज भाव से जीवन जी रहे हैं। इन पांच चीजों को हम बढ़ाएंगे। हम आज तीन चीजें लेंगे विशेष रूप से, सरलता, संतुष्टता और प्रसन्नता। तो पहली एक सुंदर धारणा हमें जीवन में अपनानी है, सरलता, सहज जीवन। इसका बड़ा गहरा अर्थ भी है और बहुत सिंपल है जानने के लिए। ये नहीं कि आप धन नहीं कमाएंगे। कई धनवान लोग हमने बड़े सरल चित्त देखे, कई साधारण लोग भी बड़े सरल चित्त होते हैं, गरीब तो सरल चित्त हो जाते हैं। सहज भाव से जीवन जीना, जीवन की भाग दौड़ समाप्त करना, मन की चिंताओं को नष्ट कर देना, जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है, चित्त को शांत कर लेना, इससे सरलता आती है। सादगी अलग चीज है, ये सरलता है। मैं क्लासेज में कई बार ये अनुभव सुनाया है, मुझे तो जैसे बाबा ने सरलता सिखाई थी। 1971 की बात है, बाबा ने पांच बातें बोली सरलता के लिए, जो मुझे बहुत सुंदर लग गई और सुंदर चली गई कि यदि तुम सरल चित्त होंगे तो तुम्हारी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी बात थी, हल्की हो जाएंगी। क्योंकि समस्याओं में मनुष्य जब ज्यादा सोचता है तो समस्या छोटी भी तूफान बन जाती है। सहज भाव से जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसकी इजी नेचर, इंग्लिश में कहेंगे इजी नेचर, बहुत लाइटनेस, इजीनेस, वो ज्यादा नहीं सोचता, इसलिए समस्याएं ज्यादा नहीं बढ़ती। वास्तव में बातें बड़ी नहीं होती, हम ज्यादा सोचते हैं तो बड़ी लगने लगती है, हमारी मन की शक्ति क्षीण हो जाती है और बातें हमें पावरफुल लगने लगती हैं। दूसरा कहा, जो सरल चित्त होंगे उनकी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। बहुत सुंदर बात है, गहरी बात है। बीमारी सबको लगी हुई है, आजकल सीरियस बीमारी भी चल रही है और अब तो कोरोना और सीरियस लग रहा है लोगों को। न जाने ये कौन सी गिफ्ट देकर जाएगा, लोग अनसर्टेन है, फील कर रहे हैं, एक भय भी है कईयों में, पता नहीं क्या होगा। सरल चित्त व्यक्ति सब नहीं सोचता। सरल चित्त व्यक्ति क्या सोचता है, आया है जाएगा, कोई बात नहीं, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, इससे भी कुछ हिसाब होगा, पूर्ण हो जाएगा, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमारे साथ तो भगवान है। सहज भाव से बीमारियां दूर। तीसरा कहा, जो सरल चित्त हैं उनके संस्कार भी सरल हो जाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष स्वरूप सबूत, जो सरल चित्त नहीं है उनका एक ही कड़ा संस्कार उनको और दूसरों को तंग करता रहेगा। लेकिन सरलता वाले संस्कारों में भी सरल होंगे। एक ने कहा, दूसरे ने माना, मॉडलिंग नेचर होगी। सहज भाव से काम करेंगे, सहज भाव से सुनेंगे, सहज भाव से सुनाएंगे, किन्हें गलती कर दी सहज भाव से उसको करेक्शन देंगे, डांट डपट नहीं, सीरियस नहीं हो जाएंगे छोटी बातों में, तो संस्कार भी सरल हो जाते हैं। और चौथी बात थी, उनके संपर्क संबंधों में भी बहुत सरलता आ जाती है, स्वीट हो जाते हैं, सभी रिलेशनशिप मधुर हो जाते हैं। क्योंकि सरल चित्त व्यक्ति ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, वो खुद भी झुक कर चलता है, दूसरों को सम्मान भी देता है, दूसरों के गुणों को भी सम्मान देता है, उन्हें एक्सेप्ट भी करता है और दूसरों को आगे बढ़ाता है, खुद भी आगे बढ़ता है। और पांचवी बात थी जो हम सबके लिए सबसे महत्व की है कि जो सरल चित्त व्यक्ति है उसका योग भी सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। इस सहज योग के बारे में बाबा ने एक बहुत ही सुंदर सूक्ष्म राज भरी बात कही है, जो सहज योगी बनते हैं वही विश्व महाराजन बनते हैं। ये राज बाबा ने अपने महावाक्यों में क्लियर किए हैं। एक है हम बैठ के बहुत टाइट होके योग करें, वो सहज योग नहीं है। दूसरा है चलते फिरते हम अनुभव करें बाबा की किरणें पड़ रही हैं, हम परम धाम में बैठे हैं, क्योंकि ये सब हमारे अधिकार हैं, ये सब हमारे अपने घर हैं। जैसे बाबा उदाहरण दिया करते हैं कि अपनी ड्रेस पहनना तो इजी होता है ना, आधा ही मिनट लगता है हम लोगों को, तो दूसरे की ड्रेस हो कभी टाइट आएगी, कभी लूज होगी, शीशा देखेंगे देर लगेगी ना। तो ये हमारे अपने स्वरूप हैं, इनमें स्थित होना हमारे लिए बिल्कुल सहज बात है। तो हम अपने जीवन को बहुत सरल बनाएं। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान दें, सरलता और अलबेलापन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई ये भी सोच सकता है सवेरे नहीं उठे कोई बात नहीं, ये नहीं, वो अलबेलापन होगा, वो केयरलेसनेस होगी, ये इजीनेस है। दिनचर्या को, बाबा के डिसिप्लिन को सहज रूप से अपना लेना, नेचुरल रूप से अपना लेना। सवेरे उठना है, सहज रूप से उठ रहे हैं, भोजन सात्विक खाना सहज रूप से खा रहे हैं, समय पे सोना, समय पर उठना, स्नान करना है, मान लो हमारा नियम है तो हम टॉयलेट जाके स्नान करते हैं, अभी तो तीन बार भी करना पड़े तो हम सहज भाव से कर लेते, मुझे कभी कभी पांच बार भी करना पड़ता था, अब तो नहीं, मैं आराम से कर लेता था, सोचता था ये भी टाइम मिलता है पांच पांच सात सात मिनट योग करने का। तो हर चीज को अपने लिए कल्याणकारी बना लेना और सहज भाव से जीवन जीना ये बहुत आवश्यक है एक योगी के लिए। ये योग युक्त जीवन का स्वरूप भी है और सरल चित्त होने से हम योगी सहज बन भी जाते हैं, दोनों एक दूसरे से ही इंटरकनेक्टेड हैं। हम दोनों को बढ़ाएंगे, सब अपने को चेक कर लें। हम बाइक चलाते हैं सहज भाव से या टेंस भाव से, सब पे ध्यान दें। फुल ऑफ टेंशन में तेज चला रहे, एक्सीडेंट न हो, कहीं कुछ गड़बड़ न हो, ब्रेक भी लगाना है, स्पीड भी कंट्रोल करनी है, इस ध्यान में है हमारी एनर्जी इसमें जा रही है कि हम सहज भाव से अपनी मोटरसाइकिल को एंजॉय करते हुए यात्रा तय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, आप भोजन बना रहे हैं, अब टेंशन में ये करना जल्दी करना है, काम ज्यादा है, इस भाव से भोजन बन रहा या सहज भाव आनंद लेते हुए भोजन बन रहा है? क्योंकि अगर हम सहज भाव से काम करते हैं तो हम एक चीज पाएंगे कि एक घंटे का काम 40 मिनट में ही हो जाएगा, मन की शक्ति हमारे कार्यों पर इफेक्ट डालेगी। और भी कोई काम है आपको, आप ऑफिस में पहुंच गए, आप एक अधिकारी हैं, आप डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर हैं, सहज भाव से काम कर रहे हो और करा रहे हैं, लोग सोचते हैं नहीं ऑफिशियल रहना ही पड़ेगा, हम ऑफिसर हैं तो नो, आप में अगर प्रेम की शक्ति है, आप में यदि पॉजिटिव पावर है, आप में यदि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, तो आपको ऑफिशियल होने की जरूरत नहीं, आप सहज भाव से ही काम करेंगे भी और कराएंगे भी, सारा डिपार्टमेंट आपके कंट्रोल में रहेगा यदि आप स्वयं पर कंट्रोल रखेंगे। स्वयं पर कंट्रोल है नहीं, दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इसलिए हम अपने पर कंट्रोल करें। मुझे याद आ गई एक बहुत अच्छी कहानी, बहुत पहले की है, महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर हमारे यहाँ आए थे, तो बड़े अच्छे, वैसे भी वो स्पीकर थे, अब तो नहीं है, अब तो देह छोड़ दिया उन्होंने, तो अपना एक अनुभव सुना रहे थे भाषण करते हुए। हमारे यहाँ आते हैं तो घरेलू रूप से आते हैं और भले स्पीच भी कर रहे हो लेकिन होमली रूप से कर लेते हैं। तो कह रहे थे मुझे लोग पूछते हैं एमएलए तो गधे होते हैं, दुलत्ती मारते हैं, लात मारते हैं सबको, अभी इन इतने एमएलए को कैसे संभालते हो, पता नहीं 300 से 350 होते होंगे। तो हंस रहा था कि मैं उनको उत्तर देता हूँ, मैं किसी को नहीं संभालता, मैं तो अपने को संभालता हूँ। हंसते हंसते उन्होंने, एक अच्छे पॉलिटिशियन ने, एक बड़ी गहरी बात कह दी। तो ये ऐसी बात है, जो अपने को संभालना जानते हैं वो परिवार को भी संभाल सकते हैं, वो डिपार्टमेंट को भी संभाल सकते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी संभालते हैं। आप ये महसूस करेंगे, आपकी मनोस्थिति श्रेष्ठ है, आपका लैपटॉप भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा, आपका मोबाइल भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा, और स्थिति में गड़बड़ है तो इनमें भी गड़बड़ हो रही है। ये बड़ी सूक्ष्म गति है, ये केवल कहने की बात नहीं, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है हमारे मन के वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ। तो चेक करेंगे अपने को, हम सरल चित्त हैं, संबंधों में भी सरल चित्त, ये नहीं हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, जो मैं चाहूं वही होना चाहिए घर में, जो मैं कहूं वही सब करें, मेरी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं ले। कई लोग ऐसे हो गए हैं, भगवान कहता है, उसके लिए कहते थे ना भगवान की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो कहता है मैं किसी पत्ते को नहीं हिलाता है, तो आप ही हिल रहे हैं, हवा से हिल रहे हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं मेरी आज्ञा के बिना घर में पत्ता भी नहीं ले, दबा के रखते हैं परिवार को। ये अच्छी नीति नहीं है, इससे परिवारों में अशांति होती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमसे भी किया जाता है। आप दूसरों को दबा रहे हैं, आपको दबाने वाले भी मिल जाएंगे। आप दूसरों को प्यार दे रहे हैं, आपको भी बहुत प्यार मिलेगा। हमें वही मिल रहा है जो हम दे रहे हैं। अंडरलाइन करें और अपने को चेक करेंगे। केवल सुन लिया, मैंने सुना दिया, आपने सुन लिया, बहुत अच्छा अच्छा कह दिया, इससे काम नहीं चलेगा। चेक करें हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, वही तो आ रहा है वापिस। जैसे गुंबज में आवाज करते हैं तो वापिस आ जाती है ना, और जोर से आ जाती है। हम क्या दे रहे हैं दूसरों को, अच्छे वचन बोल रहे हैं, अच्छे सुन रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, हमें भी लोग साथ दे रहे हैं, जो कुछ दिया जा रहा है वो डबल होकर हमारे पास आ रहा है। दुख दे रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जो लोग बहुत दुखी हैं उन्हें जान लेना चाहिए, उन्होंने दूसरों को बहुत दुख दिया है। स्वयं रियलाइज करें, कोई कहेगा तो लड़ाई हो जाएगी, स्वयं रियलाइज करें हमारे बोल, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार कष्टदायी तो नहीं है। और ये अच्छी तरह समझा दें अपने को, कष्ट देंगे तो बहुत कष्ट पाएंगे। भगवान ने तो अति कड़े शब्द बोले, दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, हम तो ये बोल नहीं सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त होने से पहले कितना दुख पाते हैं। कोई लोग सहज जाते हैं, रात को सोए थे, सवेरे हैं ही नहीं, बस कई कई तो चलते चलते ही उनको फील हो रहा, बस गए भाई, कहते गए और गए। बहुत अच्छी अच्छी मृत्यु के समाचार, बहुत कष्टदायी मृत्यु के समाचार भी हम लोग सुनते रहते हैं। तो सभी अपने को सरल चित्त बनाए, अपने को चेक करें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दृष्टि डालें अपने पर। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी गलतियों को पहचानता हो। बुद्धिमान वो नहीं जो दूसरों की गलती के लिए पॉइंट आउट करता रहता हो सदा। अपनी गलती को पहचानना, उसे स्वीकार करना, उसे चेंज करना, एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण, एक निर्मल चित्त की पहचान है। तो हम सरल चित्त बने, बस बाकी चर्चा इस पे बाद में करेंगे। हमें बहुत प्रसन्न चित्त और बहुत संतुष्ट रहना है, बहुत अच्छा ध्यान देना इन दोनों बातों पर। और जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे ईश्वरीय महावाक्य इन पर चल चुके हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारी प्रसन्नता है, देखो जो व्यक्ति बहुत खुश रहता है उसका चेहरा कैसा रहता है। संतुष्टता तुम्हारी प्रॉपर्टी है सचमुच। जो संतुष्ट नहीं है चाहे वो करोड़पति है, वो तो बेगर है, वो निर्धन है, उसके पास कुछ नहीं है। और 1,000 कमाने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट है तो सचमुच धनवान है। सच्चा धन संतोष, संतोषम परम सुखम। संतोष बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा खजाना है। अपनी नेचर को भी हम संतोषी नेचर बनाएं। और अब जिनको ईश्वरीय ज्ञान मिला है, जिनको भगवान मिला है, मेरी ये बात सुन के कोई ये ना सोचे कि श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, विष्णु के दर्शन कर लिए, महादेव का साक्षात्कार हो गया। जिनका मिलन निराकार से हुआ, जो इन सबसे ऊपर है, इन सबका क्रिएटर है, जिन्होंने उनको अपना परम पिता बनाया है, जिन्होंने उनसे अपना नाता जोड़ा है, उन्हें तो संतुष्ट हो ही जाना चाहिए। भगवान को पाने की इच्छा थी, क्या सोचते थे हम सब लोग? मैं भी सोचता था, बचपन से सोचना शुरू कर दिया था। आप भी सोचते होंगे, काश एक बार भगवान मिल जाए, फिर हमें संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, भूखा रहना भी पसंद करेंगे। मिल गया, निराकार मिल गया, सर्वशक्तिवान मिल गया, आनंद का सागर मिल गया, सुखों का दाता मिल गया, भाग्य विधाता मिल गया। कोई देदारी नहीं, कोई ये भ्रमित न हो जाए कि हम अपने किसी गुरु को भगवान कह रहे हैं। हमारा कोई गुरु है ही नहीं, हमारा गुरु तो एक निराकार परम पिता ही है, जो ज्ञान का सागर है, वही परम सदगुरु है। अब वो मिल गया, क्या इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी प्राप्ति चारों युगों में कोई हो सकती है? ये देवताओं से भी बड़ी प्राप्ति है। विश्व का साम्राज्य मिल जाए वो भी बेकार है, परमात्म मिलन के समक्ष हम सब ने इस मिलन का स्वाद चखा है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। हमने तो 50 साल भगवान को इस धरा पर उतरते हुए देखा है, बहुत सुख, उनकी शांति के वाइब्रेशन, सुखों की तरंगे, उनका परम प्रेम, उनकी पवित्र तरंगे, उनकी सर्व शक्तियां चारों ओर फैलती देखी हैं। तो इन सब को पाने के बाद भी यदि हम संतुष्ट नहीं होते तो हमें समय लेना चाहिए, संसार की कोई और शक्ति, कोई और प्राप्ति हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगी। जो भगवान को पाकर तृप्त नहीं हुआ, वो धन संपदा पाकर कैसे तृप्त होगा? अपनी तृष्णाओं को, अपनी इच्छाओं को कम कर दें, कम क्या कहूं, समाप्त कर दें, प्रभु मिलन और उसके बाद संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, उसके साथ रहने का सुख। विचार करें स्टेप बाय स्टेप, उसके साथ रहने का सुख। भगवान किसी को कह दे मेरे साथ रहो, आप में से जिन्होंने भक्ति की है वो विचार करे, आप हनुमान के भक्त, हनुमान प्रकट होकर कह दे आज से तुम्हें मेरे साथ रहना है, क्या करेंगे आप? जगदम्बा सरस्वती के भक्त हैं आप, दुर्गा देवी के भक्त हैं, शेर पर सवार होके देवी आके कहे और मेरे साथ आके मेरे शेर के ऊपर बैठ जाओ मेरी गोद में, कैसा लगेगा? भक्त तो कहेंगे सब कुछ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं चाहिए। भगवान का साथ मिल गया, उसने कहा मेरे साथ रहो, मेरे वाइब्रेशंस में रहो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ। बस इस गुड फीलिंग में आ जाएं। संसार की जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं, जिनके पीछे संसार भटक रहा है, इच्छाओं के बाद दूसरा नंबर आता है तृष्णाओं का, त्रस प्यास, जो प्यास की तरह मनुष्य भाग रहा है कुछ चीजों के पीछे, ऐसी प्यास जो कभी मिटती नहीं है, ऐसी प्यास जो तृप्त नहीं होती है, उनके पीछे भाग रहा है मनुष्य। मनुष्य भाग रहा है, उसे नहीं पता मंजिल कहाँ है, कहाँ जाना है भाग कर, उसे जहाँ उसको पहुँचना है वहां से उसे कुछ मिलेगा भी या नहीं। उलझ गया है आज का बुद्धिमान प्राणी। हम इस उलझन को समाप्त करें। ज्ञानी आत्माएं हैं, अब तृप्त आत्माएं और बन जाएं। बहुत अच्छी बात है कि हम तृप्त आत्माएं बन जाएं। हम सारे संसार को देने वाले बन जाएं, हम संसार की अनेक लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बन जाएं। और बाबा ने ये कह दिया है, जो स्वयं सभी कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे वही दूसरों की सर्वश्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो हमें आने वाले समय में दूसरों की शुभ कामनाओं को, श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करना है, तो स्वयं कामनाओं से मुक्त होकर ईश्वरीय संपत्ति से भरपूर हो जाए, इन खजानों से स्वयं को भरपूर कर लें, तो हम ये महान बाबा का कार्य कर सकेंगे। क्योंकि आने वाला समय हमें नए नए रंग दिखाने वाला है, और उसमें जैसे भगवान की तरफ लोग भागेंगे, अपने इस देव देवियों की तरफ भी भागेंगे, और हम सबको उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करनी होंगी, उनकी जन्म जन्म की भक्ति का फल भी बाबा हमारे द्वारा उन्हें प्रदान कराएगा। तो सभी बहुत अच्छी तरह विचार करें, संतुष्टता और प्रसन्नता पर पुनः हम आपके समक्ष कुछ चर्चा उपस्थित रखेंगे। पर आज आप अपने को चेक कर लें कि हमारा जीवन भगवान का ज्ञान पाने के बाद, उसका साथ मिलने के बाद सहज हो गया है। ओम शांति। अब हम 3 मिनट बहुत पावरफुल योग करेंगे, और आज हम सर्वशक्तिवान की शक्तियों की अनुभूति करेंगे। अपने को स्थित करें आत्मिक स्वरूप पर। मैं चमकती हुई आत्मा, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है। परम धाम मिले छले बुद्धि को, और स्थित कर दे सर्व शक्तिवान महाज्योति, उनकी अनंत शक्तियां चहुओर फैल रही है, जैसे कि सारा ब्रह्मलोक उनकी शक्तियों से पूरी तरह भर गया है। अब ये शक्तियां नीचे मुझ पर पड़ रही है, बस शक्तियों के फाउंडेशन के नीचे ही बैठे रहे हैं, शक्तियां में बढ़ती जा रही हैं, हमारे अंदर के सभी मनोविकार चल रहे हैं।